ये करण किसे कहते हैं, इसके लिए इन्होंने बताया था साधक तमम करणम, और साधक तमम का अर्थ किया था अतिशयितम साधक तमम प्रकृष्टम, ये अर्थ किया था साधक तमम का। तो मैंने बताया था कि साधकम अर्थात कारणम, और तम प्रत्यय का अर्थ है अतिशय, तो अतिशय से जो युक्त होता है उसको अतिशयितम कहते हैं। तो अतिशयित जो साधक तम है ऐसा कौन होगा, तो उसके लिए एक नया नाम इन्होंने दिया प्रकृष्टम, जो प्रकृष्ट होता है वही साधकतम होता है, वही अतिशयित होता है, और जो प्रकृष्ट कारण है उसी का नाम कारण है, ये बात पहले बताई जा चुकी है। मैंने कहा था कि एक और लक्षण बताऊंगा करणम का, तो कापी कलम है होगा ही सामने आपके, तो एक लक्षण और लिख लीजिए कि व्यापारवद असाधारणम, व्यापारवद असाधारणम कारणम करणम, व्यापारवद असाधारणम कारणम करणम। फिर से कहता हूँ, व्यापारवद असाधारणम कारणम करणम, लिख लिया होगा। ये व्यापारवत का मतलब होता है व्यापार से युक्त, ठीक है, और असाधारण कारण, तो मैंने कहा था ना दो तरह का कारण होता है, साधारण कारण और असाधारण कारण माने विशेष कारण, तो व्यापार से युक्त जो विशेष कारण है उसे करण कहा जाता है। ये जो है दूसरा लक्षण हुआ करण का, ये एक्स्ट्रा है ग्रंथ के अलावे मैंने बताया। तो व्यापार से युक्त जो असाधारण कारण है उसी का नाम करण है। अब यहाँ पर जो है ना व्यापार किसे कहते हैं ये भी समझना होगा, ये लेन देन वाला व्यापार वाली बात यहाँ पर नहीं है। तो व्यापार किसे कहते हैं इसका भी लक्षण आप लिख लीजिए अलग से, तज्जन्यत्वे सति। ऐसा है ना कि हम लोग न्याय दर्शन पढ़ रहे हैं इसलिए शब्द सुन करके घबराना नहीं है, जब उसका मीनिंग आप समझ लेंगे तो बड़ा आसान लगेगा। तज्जन्यत्वे सति, तज्जन्यत्वे कैसे लिखेंगे, तज्ज माने इसमें डबल ज लिखना है, आधा ज और फिर पूरा ज, तज्जन्यत्वे सति, सति में छोटी की मात्रा, तज्जन्यत्वे सति, तज्जन्य जनकत्वम, तज्जन्य जनकत्वम, फिर से बोलता हूँ, तज्जन्यत्वे सति, तज्जन्य जनकत्वम व्यापारत्वम, तज्जन्यत्वे सति, तज्जन्य जनकत्वम व्यापारत्वम, तज्जन्यत्वे सति, तज्जन्य जनकत्वम व्यापारत्वम, ठीक है। ये व्यापार का लक्षण है, इसको हम हमें समझना है कि तो कैसे समझेंगे कि ऐसा है कि मिट्टी का घड़ा जो बनता है उसमें तीन चीज़ें हैं। अभी इस चीज़ को समझने के लिए, एक तो मिट्टी का चक्र होता है जो घूमता रहता है, और दंडा से जो है ना उसको घुमाते रहते हैं, तो एक तो दंड चक्र हो गया। दूसरा कपालद्वय संयोग हुआ, ये कपालद्वय संयोग क्या होता है इसको भी समझिए। ऐसा है कि आपने गांव में देखा होगा कभी कि मिट्टी का जो है ना एक बहुत बड़ा जो है ना पात्र बनाते हैं जिसमें कि धान चावल गेहूं ये सब रखा जाता है गांव में, तो वह जो मिट्टी का बड़ा सा जो वो बनाया जाता है रखने के लिए, वो कैसे बनता है, तो उस दो पार्ट में बनता है। पहले एक पार्ट बना लेते हैं मिट्टी का, फिर नीचे का, फिर ऊपर वाला आधा पार्ट बना लेते हैं, और फिर उसको उठा करके दोनों को ज्वाइंट कर देते हैं। जब वो दोनों ज्वाइंट हो जाता है, नीचे का पार्ट और ऊपर का पार्ट, फिर जो है ना वह एक बहुत बड़ा पात्र मिट्टी का बन जाता है, और ऊपर में जगह रहती है खाली, उसमें ढक्कन लगा रहता है, तो ऊपर की जगह जो है उसमें से अनाज डालते हैं और फिर वो ढक्कन ऊपर में लगा देते हैं, और नीचे में एक छिद्र रहता है जिस छिद्र से जब अनाज निकालना होता है तो उसको खोल करके उसमें से अनाज निकाल लेते हैं। हम लोग अपने यहाँ इसको कोठी कहते हैं, और जगह जगह इसका अलग अलग नाम होता है। तो जैसे वो मिट्टी का बड़ा सा पात्र बनाया जाता है अन्न भंडारण करने के लिए, इसी टाइप का ये जो न्याय शास्त्र में जब भी घट की बात होगी, और इसमें घट की बात बहुत होती है, तो न्याय शास्त्र का जो घट है ना वो कैसा है इसको जान लीजिए। यह जो घट है ना वो बड़ा सा घट है, इस घट के दो पार्ट होंगे, एक नीचे वाला पार्ट होगा एक ऊपर वाला पार्ट होगा, और फिर दोनों पार्ट को एक जगह ज्वाइंट कर देते हैं तब जाकर के वो एक घड़ा बन जाता है। तो ये जो दो अलग अलग पार्ट हैं ना घड़े के, उसी को हम संस्कृत में कपाल कहते हैं, ठीक है। तो कपाल द्वय संयोग, वो जो दोनों को टुकड़े को जो आप ज्वाइंट करेंगे उसी को संस्कृत में कहेंगे कपाल द्वय संयोग। कपाल द्वय माने दोनों कपालों का संयोग माने ज्वाइंट करना। और तीसरा हो गया घट, मैंने कहा था ना कि अभी तीन चीजों को आप सामने रख लीजिए, एक तो दंड चक्र रख लीजिए, चक्र मत समझ रहे हैं ना, मिट्टी का चाक जो होता है और दंड उसको रख करके घुमाया जाता है, तो एक तो हो गया दंड चक्र, दूसरा हो गया कपालद्वय संयोग, कपालद्वय संयोग मैंने सिखा दिया, और तीसरा है घट। अब यहाँ पर आप गौर करिए कि तीन चीजें हैं, क्या होगा कि दंड चक्र के द्वारा दंड चक्र के द्वारा क्या होगा कि कपालद्वय संयोग होगा, और कपालद्वय संयोग होने के बाद घट की उत्पत्ति होगी। अब यहाँ पर जो है ना हमें ये जो व्यापार का आपने लक्षण लिखा है, तज्जन्यत्वे सति तज्जन्य जनकत्वम, इसको इस लक्षण को इसमें समन्वित करना है, इसका समन्वय करना है। तो तज्जन्यत्वे में तत्जन्यत्वे है ना, तो तत् से पकड़ लीजिए दंड चक्र को, तो क्या होगा अब दंड चक्र जन्यत्वे सति, जन्य माने उत्पन्न, मैंने बताया हुआ है कि जो दंड चक्र से उत्पन्न हो, तो कपालद्वय संयोग जो होता है वह तज्जन्य होता है, माने दंड चक्र से जन्य होता है, उत्पन्न होता है, तो ठीक है। तो तज्जन्यत्वे सति माने तज्जन्य होने पर, सति का अर्थ होता है होने पर, तो उससे जन्य होने पर, किससे जन्य होने पर, तो दंड चक्र से जन्य होने पर। तो इस तरह से दंड चक्र से जन्य कौन है, कपालद्वय संयोग है। अब दूसरा पार्ट है तज्जन्य जनकत्वम, पहले तत्पद से किसको पकड़े थे हम, दंड चक्र को पकड़े थे ना, यहाँ पर भी तज्जन्य जनकत्वम में तत्पद से दंड चक्र को पकड़ना है, तो क्या होगा दंड चक्र जन्य जनकत्वम, ऐसा होगा ना। तत् शब्द का अर्थ अगर हम दंड चक्र करें तो तज्जन्य जनकत्वम का क्या अर्थ हो जाएगा, दंड चक्र जन्य जनकत्वम, अर्थात दंड चक्र से जो जन्य है उत्पन्न है उसका जनक जो होगा वह व्यापार होगा। तो अब देखिए तत् से लिया दंड चक्र को, उससे जन्य क्या है घट, पहले दंड चक्र से जन्य किसको कहा था, कपालद्वय संयोग को, और यहाँ पर तज्जन्य से किसको कह रहे हैं कि घड़े को कह रहे हैं, इसलिए हमने तीन चीजें रखी थी, एक तो दंड चक्र रखा था, दूसरा कपालद्वय संयोग रखा था, और तीसरा घट रखा था। तो दूसरा जो पार्ट है तज्जन्य जनकत्वम, इसमें तत्पद से ले लिया दंड चक्र को, उससे जन्य कौन हो गया घट, उसका जनक कौन है कपालद्वय संयोग, क्योंकि जब कपालद्वय संयोग होता है ना तभी घट जो है उत्पन्न होता है। तो ये दोनों चीजें जो है ना किसमें जा रही हैं, तज्जन्यत्व किसमें जा रहा है कपालद्वय संयोग में, तज्जन्य जनकत्व भी किसमें जा रहा है कपालद्वय संयोग में जा रहा है। तो ये जो कपालद्वय संयोग है यही यहाँ पर घट उत्पत्ति में व्यापार कहलाएगा। कोई पूछे कि घट उत्पत्ति में व्यापार क्या होता है, तो कपालद्वय संयोग होता है। तो कहेगा क्यों कपालद्वय संयोग व्यापार क्यों होता है, क्योंकि व्यापार का जो लक्षण है तज्जन्यत्वे सति तज्जन्य जनकत्वम, ये लक्षण कपालद्वय संयोग में चला जाता है, इसलिए वह व्यापार है। कहेगा कैसे जाता है, तो तज्जन्यत्व भी इसमें है और तज्जन्य जनकत्व भी है। कैसे, तो तत्पद से पकड़ेंगे दंड चक्र को, और दंड चक्र से जन्यत्व किसमें है कपालद्वय संयोग में, क्योंकि दंड चक्र से ये कपालद्वय संयोग उत्पन्न होता है। दूसरा तज्जन्य जनकत्व भी कपालद्वय संयोग में है, तत्पद से लिया दंड चक्र को, उससे जन्य हो गया यहाँ पर घट, और उस घट का जनक जो है कपालद्वय संयोग होता है। तो दो जो अंश है व्यापार कहलाने के लिए जरूरी है, एक तज्जन्यत्व होना, दूसरा तज्जन्य जनकत्व होना। तो ये तज्जन्यत्व भी कपालद्वय संयोग में है, तज्जन्य जनकत्व भी कपाल द्वय संयोग में है, इसलिए कपाल द्वय संयोग जो हो गया वो घटोत्पत्ति में व्यापार हो गया। तो इस तरह से हमने व्यापार को समझा कि व्यापार क्या होता है, तो जो तत् से जन्य हो और जो तत् से जन्य का जनक हो वह व्यापार कहलाता है। अब आ जाइए जो मैंने लक्षण शुरू में लिखाया था, व्यापारवत असाधारणम कारणम करणम, माने व्यापार से युक्त जो असाधारण कारण है वह करण होता है। तो व्यापार से युक्त कौन से व्यापार से युक्त, तो यही अभी जो तज्जन्य तज्जन्य जनकत्व बोला, मतलब कपाल द्वय संयोग ये व्यापार हुआ, उससे युक्त जो असाधारण कारण होगा वही करण कहलाएगा, ये इस लक्षण का तात्पर्य हुआ। अब फिर हम ग्रंथ की पंक्ति पर चलते हैं कि ग्रंथ में कहते हैं कि ननु साधकम कारणम इति पर्यायस्तदेव न ज्ञायते किं तत् कारणम इति। मैंने कभी कहा था अपने पाठ में कि जब कोई नई बात उठानी होती है ग्रंथकार को तो ननु शब्द से वो शुरुआत करते हैं। तो यहाँ भी अब एक नई बात इनको उठानी है तो वो पूछ रहे हैं कि पिछले पाठ में देखिए कि उन्होंने कहा था ना साधक तमम करणम, और उसमें मैंने अर्थ बताया था कि साधकम अर्थात कारणम, तमम का अर्थ बताया था अतिशयितम। तो वही कह रहे हैं कि ननु साधकम कारणम इति पर्यायः, कारणम और साधकम ये दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। पर्यायवाची शब्द कहते हैं कि अर्थ एक हो और शब्द अलग अलग हो, तो साधकम कारणम इति पर्यायः ये दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। तदेव न ज्ञायते, ताकि साधक का ही अभी ज्ञान नहीं हो रहा है, किं तत् कारणम, तो जब साधक का ज्ञान नहीं हो रहा है तो फिर कारण का ज्ञान कैसे होगा। बात यह है कि पूछा कि कारण किसे कहते हैं, तो कहा कि साधक को कारण कहते हैं। तो अब साधक मुझे मालूम हो कि साधक क्या होता है तब पता चलेगा ना कि कारण क्या होता है। आपने कारण को समझाने के लिए साधक शब्द का प्रयोग किया और हमें साधक ही मालूम नहीं है कि साधक क्या होता है, तो कैसे पता चलेगा कि कारण क्या होता है और करण क्या होता है। वही प्रश्न किया, पंक्ति को फिर से देख लेते हैं। ननु साधकम कारणम इति पर्यायः, साधक और कारण ये जो दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। तदेव न ज्ञायते, माने साधक शब्द का ही ज्ञान नहीं है तो किं तत् कारणम इति, तो फिर कारण का अर्थ ज्ञान कैसे होगा। इसलिए आप हमें ये बताइए कि कारण होता क्या है, क्योंकि साधकम कारणम कहने से कारण का पता नहीं चलेगा। अब कारण को बताने के लिए आपको कारण का लक्षण करना पड़ेगा, तो वह कारण का लक्षण क्या है, तो कहा कि उच्यते, माने कारण का लक्षण यहाँ बताया जाता है। यस्य कार्यात पूर्व भावो नियतः अनन्यथा सिद्धश्च तत्कारणम्। फिर से पंक्ति पढ़ता हूँ। यस्य कार्यात पूर्व भावो नियतः अनन्यथा सिद्धश्च तत्कारणम्। देखिए जब कभी कारण की चर्चा होगी ना तो वहाँ पर कार्य की चर्चा अवश्य होगी, क्योंकि कारण जो है वह जनक होता है, उत्पादक होता है, और कार्य जो है ना वह जन्य होता है, उत्पन्न होता है। अब जैसे पिता पुत्र में ले लीजिए तो पिता हो जाएगा जनक कारण और पुत्र हो जाएगा कार्य उत्पन्न जन्य, ठीक है। तो यहाँ पर कारण का इन्होंने लक्षण जो किया है इसमें तीन शब्द इन्होंने महत्वपूर्ण डाला हुआ है। एक डाला हुआ है पूर्व भाव कार्यात पूर्व भाव, दूसरा है नियत और तीसरा है अनन्यथा सिद्धश्च। तो कार्यात पूर्व भाव कार्य से पहले जो हो, पूर्व भाव यानी पूर्व में होने वाला, पूर्व में रहने वाला, तो कार्य से पूर्व में जो रहने वाला है। दूसरा जो नियत है, नियत मतलब निश्चित रूप से उसका होना होना ही है, अब उसके अभाव में काम नहीं होता है, तो जो नियत है। और अनन्यथा सिद्धश्च, और जो अनन्यथा सिद्ध है वही कारण कहलाता है। फिर से आप देखिए, फिर मैं अलग अलग भी एक एक शब्द को बताऊंगा कि यस्य कार्यात पूर्व भावो नियतः अनन्यथा सिद्धश्च तत्कारणम्। यस्य से पकड़ना है किसको, कारणस्य, यस्य कारणस्य माने जो कारण है वह क्या कैसा कारण होता है, तो कार्यात पूर्व भाव, वह कार्य से पहले रहता है। ये तो सही बात है ना, पहले पिता होगा तब तो पुत्र होगा, पहले कारण रहेगा तभी तो कार्य होगा। तो यस्य कार्यात पूर्व भाव, जो कार्य से पूर्ववर्ती होता है, पूर्व में रहता है और नियत रहता है, नियत रहता है माने निश्चित रूप से वह होता है। एक नियत का अर्थ ना व्यापक भी आप कर सकते हैं कि जो व्यापक हो, माने वह हर जगह जो है ना, जहाँ जहाँ कारण कार्य होगा वहाँ पर वह होगा ही, इसी को कहते हैं व्यापक। तो यस्य कार्यात पूर्व भाव, जो कार्य से पूर्व भावी हो माने पूर्ववर्ती हो, नियत हो माने व्यापक रूप से रहे, और अनन्यथा सिद्धश्च, इसको अनन्यथा सिद्ध में ना, नौ अन्यथा सिद्ध, अनन्यथा सिद्ध, क्या कहेंगे, नौ अन्यथा सिद्ध, अनन्यथा सिद्ध, माने जो अन्य टाइप से सिद्ध न होता हो, अन्य प्रकार से सिद्ध न होता हो, उसको कहते हैं अनन्यथा सिद्ध। अन्य प्रकार से सिद्ध होने वाला हो गया अन्यथा सिद्ध, और जो अन्य प्रकार से सिद्ध न हो उसको कहते हैं अनन्यथा सिद्ध। तो इस तरह से कारण कहलाने के लिए तीन चीज़ें जरूरी हैं, एक तो कार्य से पूर्ववर्ती होना चाहिए, दूसरा कार्य से नियत होना चाहिए, कार्य के साथ व्यापक होना चाहिए, तीसरा अनन्यथा सिद्ध होना चाहिए, माने उसके बगैर वह कार्य उत्पन्न नहीं हो सकता हो, तो हो गया अनन्यथा सिद्ध। तो जो कार्य से पूर्ववर्ती हो, नियत हो, अनन्यथा सिद्ध हो, उसी को कहते हैं कारण। ये कारण का इन्होंने लक्षण किया। अब उदाहरण बताते हैं कि ऐसा कौन है, तो यथा तंतु बेमादिकम पटस्य कारणम, पट कहते हैं वस्त्र को, और वस्त्र जो है ना यह उत्पन्न होता है, जन्य होता है, तो वस्त्र हो गया कार्य, पट हो गया कार्य, उसका कारण क्या है, तो तंतु बेमादिकम कारणम, तंतु बेमा आदि जो है उसका पट का कारण होता है। आपने कभी जुलाहे को जो वस्त्र बनाता है ना, वस्त्र बुनता है, उसको अगर कहीं देखा होगा, उसमें आप क्या करता है ना कि ये बांस का खूंटा जो है ना दो बगल में अति गाड़ देता है जमीन में, और फिर एक दंदे में जो है ना सूत लपेटा हुआ रहता है, और दो तरह का वह सूत लपेटने वाला डंडा होता है, उसी को बेमा कहते हैं, तुरी कहते हैं, और तंतु कहते हैं सूत को, जिससे वस्त्र का निर्माण होता है। तो वस्त्र के वस्त्र रूपी कार्य में, पट रूपी कार्य में तंतु बेमा आदि जो है वह क्या होता है, कारण होता है। तंतु माने समझ गए ना सूत, और बेमा वो हो गया जिस डंडे में सूत लपेटा हुआ रहता है, जैसे ये पतंग उड़ाते हैं ना, तो वो जो हाथ में रखते हैं उसमें सूत लपेटा, धागा लपेटा हुआ रहता है, तो उसी तरह से वह बेमा होता है। तो तंतु बेमा आदि जो है ना पट का कारण है, कैसे, तो इसमें तीनों लक्षण जा रहे हैं। तंतु बेमा जो है वो पट रूपी कार्य से पूर्ववर्ती भी है, और कार्य जो पट है उसके लिए वह नियत है, माने व्यापक रूप से वो रहता ही रहता है बिना, और तीसरा अनन्यथा सिद्ध भी है, बिना तंतु बेमा आदि के पट की सिद्धि नहीं हो सकती है। तो ये तीनों लक्षण जाने के कारण तंतु बेमा आदि को पट का कारण माना जाता है। आज का पाठ यहीं।